आज हम बात करेंगे समस्थापन यानी होम्योस्टेसिस पर, जो कि सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी कोर्स के मॉड्यूल 2 का लेसन नंबर 18 है। तो उसी में हम बात करने जा रहे हैं, उसी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि हमको पता है कि जैसा हम सभी जानते भी हैं और देखा भी है कि किसी भी वांछित प्रभाव या परिवर्तन को लाने में किस तरह से हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट क्षण के रूप में काम करती है, और ताकि हमारा जो इस तरह से बॉडी के सभी ऑर्गेन सिस्टम इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि सभी जो है हमारा जो शरीर है वो सुचारू रूप से काम कर सके। और हमारे जो शरीर में है, जैसे हमको पता है कि बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि हम पहले ही शायद किसी पार्ट में पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो उनका क्या है कि जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसीलिए हम यह भी जानते हैं कि किस तरह से हमारा जो शरीर है वो, हमें यह भी पता है कि हमारा शरीर के भीतर जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें वो कब कौन सी क्रिया प्रारंभ की जाए, कब वो काम तेजी से कराया जाएगा, यानी वो प्रक्रिया कब तेज होगी, कब वो मंदी होगी, यानी कब वो धीरे 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 होगी, धीमे चलेगी, या फिर कब उसे समाप्त करना है, इस बारे में है। और ये एक सामंजस्य चलता है, एक कोऑर्डिनेशन है, जिसे कि हम कहते हैं समस्थापन। तो आज हम बात करेंगे कि शरीर में ये समस्थापन किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी कि पहले तो हम बात करेंगे समस्थापन यानी होमोस्टेसिस है क्या, और फिर हम बात करेंगे जो होमोस्टेसिस है वो क्या है। होमो मीन्स सेम, समस्थापन का अगर हिंदी अनुवाद करें तो साम्यवस्था बनाए रखने की बात होती है। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो होमोस्टेसिस मीन्स होता है स्टडी स्टेट, यानी एक स्थिर अवस्था, स्थायी अवस्था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो होमोस्टेसिस है वो हमारे शरीर के विभिन्न भीतर विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक काम करती है, और ये एक ऐसी जरूरत है, ऐसी आवश्यकता है, ऐसी नीड है जो कि होती है हमारी थर्मोरेगुलेशन यानी ताप नियमन की। तो हम बात करेंगे साथ साथ ताप नियमन की यानी थर्मोरेगुलेशन की भी बात करेंगे। तो जैसे हमने बात की कि हम होमोस्टेसिस पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो क्या क्या बात करेंगे कि ये है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या है, और जो थर्मोरेगुलेशन है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है, ताप नियमन की जरूरत क्यों है, और ये ताप नियमन किस तरह के होते हैं, एक्टोथर्म भी होते हैं और एंडोथर्म भी होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे हम ताप उत्पादन की और ताप क्षय की, यानी कैसे हम हमारी बॉडी ताप को जनरेट करती है और कैसे अगर एक्सेस टेम्परेचर अगर हो जाए तो कैसे वो रिलीज किया जाता है, हटा जाता है। तो शरीर का अगर हम साथ में ये भी बात करेंगे कि रेगुलेटरी सेंटर कौन सा है, कि कौन सा ऐसा शरीर का अंग है जो कि इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, और उसका मैकेनिज्म क्या है, यानी उसकी कार्य प्रणाली क्या है, काम कैसे करता है। तो ये होती है हमारी फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि दो तरह से हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव फीडबैक होगी। तो इसकी भी हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा के दौरान कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो हम अगली चर्चा में इसको जरूर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो होमोस्टेसिस है वो कॉन्सेप्ट है क्या, यानी समस्थापन की संकल्पना क्या है। तो जैसा कि नाम से है कि होमोस्टेसिस, होमो मीन्स होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो इसका मतलब होता है ग्रीक में होमियो मीन्स समान और स्टेसिस मीन्स अवस्था। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्थापन एक वो परिघटना है जिसमें कि जो शरीर है उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, शरीर में तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, तो ये सिस्टम अपने हर समय काम करते ही रहते हैं, चाहे हम रेस्ट उसमें हों या हम एक्टिव हों, कुछ सिस्टम तो लगातार ही काम करते रहे, जैसे हमको पता है कि कौन कौन से सिस्टम किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये वो स्टेट है, वो फिनोमिना है जिसमें शरीर अपनी प्रक्रियाओं का नियमन करता रहता है, ताकि जो शरीर की आंतरिक परिस्थितियां हैं वो यथासंभव रूप से स्थायी बनी रहें और ये इसलिए भी जरूरी है होम्योस्टेसिस कि हमारे जो सेल हैं, बॉडी की जो सेल हैं, वो ठीक प्रकार से काम करने के लिए अपने आसपास, अपने चारों ओर एक उपयुक्त वातावरण या परिस्थितियां बनाती हैं जिसकी की आवश्यकता होती है। तो इन परिस्थितियों में क्या क्या शामिल हो सकता है? जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले रसायन हैं, उनका एक डेफिनेट अमाउंट में कंसंट्रेशन यानी सांद्रता होना जरूरी है, और इन प्रक्रियाओं को करने के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही क्षारकता या अम्लता की एक मात्रा यानी एक समुचित पीएच की भी जरूरत होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी, अगर ये जो भी अंदर हमारी एक्टिविटीज हो रही है उसमें ये रसायन, कोशिका के अंदर जो रसायन है उनकी सांद्रता के बारे में बात करते हैं हम, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, और पीएच यानी इनका एक निश्चित अनुपात में होना आवश्यक होता है। और हमारे ही नहीं बल्कि अगर दूसरे जीव जंतुओं की भी बात करें तो ये जो हमारे शरीर के भीतर या जो प्रक्रियाएं हो रही हैं या किसी अन्य जंतु के में प्रक्रिया हो रही है तो इसमें ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कि बाहर के वातावरण में यानी बाहर के जो तापमान है, परिसर में जो तापमान है उसके अनुसार ये घटती और बढ़ती भी रहती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी भी परिवर्तन के लिए जो सहन शक्ति है, सहनशीलता है, वो हर जीव की, हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट डिफरेंट होती है, और इसको, इन परिवर्तनों को अपने अनुकूल बनाने के लिए या इन परिवर्तनों को सहन करने के लिए हमारी जो जीव है वो अनेक तरह के कुछ कुछ उपाय करते रहते हैं, कुछ कारगर उपाय करते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या होता है और ये हमारे सबके लाइफ में अगर हम देखें तो हम इनको हमेशा ही उपयोग करते रहते हैं, लेकिन हम उस एंगल से नहीं बात करते हैं कि ये होम्योस्टेसिस के कारण ही है। तो हम कुछ उदाहरणों पर पहले बात करेंगे और उसके बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं कि हम पानी क्यों पीते हैं। हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं। जल जो पीते हैं वो क्यों? क्योंकि स्थिर स्थायी जल संतुलन शरीर में बनाए रखने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो बॉडी का कम से कम 70% हिस्सा जो है वो जल से ही बना हुआ है, तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो अलग अलग मौसम में हम अलग अलग पानी की क्वांटिटी को भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि अगर गर्मी बहुत पड़ रही है तो हम बहुत सारा पानी पीते हैं, और अगर ठंडी होती है तो हम पानी तो पीते हैं लेकिन गर्म पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं, पानी की मात्रा हम उतनी नहीं पीते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर में, अलग अलग मौसम की बात कर रहे हैं जैसे, तो हमारे रुधिर में जो भी भोज्य पदार्थ हमने खाए या कुछ किया तो उस वो जो है जो रक्त है वो तरल माध्यम में है, और उसी में ये सारे जो हमारे पोषक तत्व हैं वो उसमें विलय होते हैं, और उसी के वो रक्त के माध्यम से ही ये सारे बॉडी में पहुंचते हैं, और हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे रुधिर में और शरीर के जो अन्य तरल पदार्थों में जल की एक निश्चित मात्रा पाई जाती है। बॉडी वेट में भी ऐसे हमने बात की, और क्योंकि जल शरीर में जल का जो आयतन है वो जब बढ़ने लगता है तो हमने जो पानी पिया है, जो अपना पानी बॉडी को जरूरत है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी क्या होता है, बाकी जो है वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं, एक्सेस जल को और जो मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, वो भी मूत्र के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। यानी जितनी बॉडी को जरूरत है उतना पानी वो एब्जॉर्ब करता है, अपने काम में लाता है, बाकी को वो बाहर निकाल देता है। और अगर मान लो जल की मात्रा अगर कम हो रही है तो भी बॉडी को, अगर हमने कम पानी पिया है तब भी वो बॉडी को जितना पानी चाहिए वो उतने पानी को रोक लेता है, अपने अंदर ही रोक लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जल जो है, जो शरीर है वो अपने भीतर जल की एक स्थिर अवस्था यानी एक समस्थापन को बनाए रखता है। इसीलिए जैसे हमने बात की, गर्मी में बहुत प्यास लगती है, पानी बहुत पीते हैं, और पानी ही नहीं, हमें बहुत गर्मी लग रही होती तो हम ठंडा पानी पीने के लिए या ठंडे पेय पदार्थ है, शरबत है, उस तरह की चीजें भी हम लेते हैं। लेकिन गर्मियों में जो यूरिन है वो उसकी क्वांटिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हमारे बॉडी से पसीने के रूप में बहुत सारा पानी निकल जाता है, और जब हम जो मूत्र भी अगर निकालते हैं, अब रिलीज कर रहे हैं, पेशाब जब हम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत कंसंट्रेट होता है। और जैसे हमने बात की कि पसीने के द्वारा बहुत सारी मात्रा हमारी शरीर से पानी की बाहर चली जाती है, और इसके इससे क्या होता है कि हम हमारे जो शरीर को जितना पानी का परसेंटेज जरूरत है, रिक्वायर्ड है, वो उतना हमारे बॉडी में रहना चाहिए। इसीलिए हमारा यूरिन में जो कम होता है और कम मात्रा में हम यूरिन पास करते हैं, और शरीर को जो जरूरत का पानी है वो उसे मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारा पानी हमने उसके जरिए, पेशाब के जरिए बाहर निकाल दिया होता है, नहीं पसीने के जरिए बाहर निकालते हैं गर्मियों में। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में क्या होता है, एक तो प्यास कम लगती है, और प्यास लगती भी है तो पानी हम बहुत कम पीते हैं, लेकिन हम गर्म पेय पदार्थ जरूर पीते हैं, चाय कॉफी जो भी गर्म हम पी सकते हैं वो हम पीते हैं, और शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए भी हमें गर्म चीजों की जरूरत, गर्म पेय पदार्थों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस सर्दियों के मौसम में हमारा यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, हमें बार बार यूरिन निकालने, हमें बार बार मूत्र आता है और हम पेशाब करने निकलते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे को वातावरण में गर्मी है, वातावरण ठंडा है, गर्मियों में वातावरण गर्म होता है तो हमारा पसीने के रूप में निकल जाता है, लेकिन सर्दियों में ठंडा होता है तो हमारा पसीना तो रिलीज नहीं होता है, इसीलिए वो जो पानी है एक्स्ट्रा, जो इतना पानी हमने यूज किया नहीं यूज करना है, वो मूत्र के रूप में निकलता है। लेकिन एक और बात है कि जो गर्मियों में मूत्र हम निकालें वो कॉन्सेंट्रेट है, यानी सांद्रित है, लेकिन सर्दियों में वो पतला होता है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा कम होती है, वो पानी की मात्रा ज्यादा होती है और वो डाइल्यूट होता है। उसी तरह से आपने देखा होगा जब आप बहुत थके होते हैं, आपको लगता है कि एनर्जी नहीं है तो आपका कुछ मीठा खाने का मन करता है, यानी आप शुगर लेते हैं और उससे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको बैलेंस करते हैं, स्थिर करते हैं। तो अगर सपोज आपने बहुत सारी मिठाइयां और चीनी खाई है किसी भी तरह से, पेय पदार्थ के रूप में या मिठाइयों के रूप में या किसी भी तरह से, तो बहुत ज्यादा चीनी आपके बॉडी में चली गई है तो क्या होगा? आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपका शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो भी चीनी की इस जो एक्स्ट्रा मात्रा है उसको वो क्या करती है, जितना उसको सामान्य जो भी रिक्वायरमेंट है शुगर का वो रखती है, बाकी का क्या करती है उसे वो लिवर में भेज देती है। लिवर क्या करता है कि उसको शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र कर लेता है, और हमारी बॉडी ग्लाइकोजन क्या है, बॉडी फैट है, तो वो बॉडी फैट के रूप में मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि हमने बहुत सारी चीजें खाई, कई बार हम लोग ना खाना नहीं खा रहे होते हैं क्योंकि हमारा फास्ट होता है, अगर हम उपवास कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन उस समय भी हमारी एक्टिविटीज चल रही होती है ना, हमें जो काम करना है हम काम कर रहे होते हैं, या हम बहुत बार बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, तो जब हम बहुत ज्यादा शारीरिक वर्क कर रहे हैं तब भी हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो एनर्जी वही है जो यकृत में संचित ग्लाइकोजन था, जो वसा थी, जो वो जो शुगर था, ब्लड शुगर, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वही उसको जो हमारा उस समय जब हमने फास्ट रखा हुआ है और हम काम कर रहे हैं, तो जो लिवर में संचित ग्लाइकोजन है वो उसको वापस प्रयोग करने के लिए देता है, हमें काम करने के लिए उसको ग्लाइकोजन को वापस वो ग्लूकोज में बदल देता है, ताकि जब हमारी शुगर कम हो रही है तो वो बराबर बैलेंस हो जाए, यानी कि जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल रहे। इसीलिए उपवास में भी हम काम करते रहते हैं, हमने कुछ खाया भी नहीं, तब भी बॉडी के अंदर जो उपस्थित फैट था, ग्लाइकोजन था, वो शुगर में कन्वर्ट हो गया और हमें काम करने की शक्ति मिलती रही उपवास के समय भी। ये दो एग्जाम्पल की बात हमने की। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो है कि रुधिर क्षारकता जो होती है, यानी ब्लड एल्कलिनिटी की जो स्टेट है उसको स्थिर रखने के लिए भी स्थिर अवस्था को भी सामान्य रखने के बनाए रखने अभी होम्योस्टेसिस का ही एक उदाहरण है। वो कैसे? क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना, हमको एक जो हम नमक लेते हैं खाने में उसकी एक निर्धारित मात्रा है, वही हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कई बार हम जरूरत से ज्यादा नमक कर ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो क्या होगा? क्योंकि रुधिर को जो ब्लड में, जो रुधिर में आपको नमक का लेवल चाहिए, वो एक उसका पीएच निर्धारित है, पीएच 7.34 से 7.43 होना चाहिए, उस लेवल को बनाए रखता है। जो बाकी बचा हुआ जो है वो क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो हमें जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा नमक हमने खाया है वो हमारा यूरिन के माध्यम से वो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि बॉडी को जितना पीएच जरूरी है, जितने नमक की आवश्यकता है, जितना सॉल्ट हमें चाहिए वही हमें मिलेगा, लेना है। और जब वो निकल जाता है तो उसका, क्योंकि वो शरीर में इकट्ठा नहीं कर सकता है, तो जितना हमारा पीएच जरूरी है नमक के थ्रू जो हमें मिलना है वो सिर्फ उतना ही रहेगा। और दूसरी भी एक स्थिति ये हो सकती है, ये तो ज्यादा नमक खाने की बात की हमने, दूसरा होता है कि कई बार टेंडेंसी होती है ना कि आप नमक बहुत कम खाते हैं या नमक नहीं भी खाते हैं, तो हो सकता है कि उस समय भी आपका, अगर गर्मी का मौसम है, पसीने आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं है, तब भी हमारा सॉल्ट बॉडी से निकल रहा है, नमक निकाल रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपकी किडनी है वो सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है उसके द्वारा जो शरीर में नमक गया है उसकी आवश्यक मात्रा जो शरीर को चाहिए उसको वो इकट्ठा वो भीतर रोक लेती है, नहीं उसको भी वो बैलेंस करके रखती है, उसका भी लेवल बनाए रखते हैं। अगला है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो आरबीसी है यानी रेड लाल रुधिर कोशिकाएं जो है उनकी संख्या को बनाए रखने के लिए, उसका एग्जाम्पल ये है कि एक मोटा, अगर एक अनुमान के अनुसार कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है, उसके शरीर में जो एक घन मिलीमीटर अगर ब्लड की हम बात करें तो उसमें लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख जो है आरबीसी होती हैं, यानी 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के सैंपल में इतनी 50 लाख रुधिर कोशिकाएं होती हैं। अगर सपोज कोई मैदान में रहने, जैसे दिल्ली का अगर बात करें तो ये प्लेन एरिया है, और अगर हम जा रहे हैं कहीं लद्दाख वाले रीजन में तो पहाड़ी, पहाड़ का एरिया आ गया, तो अगर ऊंचाई में पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो मैदान में रहता है वो लगातार यात्रा करते हुए उस पहाड़ी इलाके में जा रहा है तो क्या होगा कि उसे ना 2-3 दिन तक थकावट बहुत महसूस होती है, लेकिन उसके बाद वो सामान्य हो जाता है। कैसे? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनकी जो सामान्य संख्या है, जो कि ऑक्सीजन को, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाओं में ऑक्सीजन समाहित होती है और वो फिर ब्लड के थ्रू सारे शरीर में जाती है, तो उसको जो ऑक्सीजन धारण करने वाली जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जो मात्रा उसमें ऑक्सीजन ली गई है वो अपर्याप्त होती है। लेकिन 1-2 दिन के बाद उस वातावरण में जाने से ये लाल रुधिर कोशिकाएं ब्लड में बढ़ जाती हैं और व्यक्ति को जो वांछित ऑक्सीजन की मात्रा है वो उसे मिल जाती है। जब वो मिल जाती है तो उसको जो थकावट है वो नहीं महसूस होती है, लेकिन जब वो व्यक्ति वापस आता है, अब पहाड़ पे गया तो ऑक्सीजन आरबीसी बढ़ गई, लेकिन जब वो वापस मैदान में आता है तो बढ़ी हुई आरबीसी तो मैदान में जरूरत नहीं है, तो क्या होता है कि जब पहाड़ जो उसने लाल रुधिर कणिकाएं उसे पहाड़ पर रहते हुए मिली थी वो क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन को धारण करने की क्षमता ज्यादा हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी लेने की क्षमता बढ़ गई, लेकिन जब मैदान में आएगा तो वो हानिकारक हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी क्या करती है कि जो आरबीसी बढ़ गई थी वो फिर से उन्हें एडजस्ट कर देती है जब वो व्यक्ति मैदान में आता है, और ये जो आरबीसी हैं ये संख्या में कम हो जाती हैं और अपने मूल स्तर में, यानी कि अगर सपोज 50 लाख थी तो वो 50 लाख पर ही आकर स्थिर हो जाती हैं, क्योंकि उससे ज्यादा हमारे को मैदान में उनकी जरूरत नहीं है। अब अगला उदाहरण है हमारा कि जो हमारा शरीर है उसको ठंड भी लगती है और गर्मी भी लगती है, वो महसूस कैसे हो, क्यों होती है? वो इसलिए महसूस होती है, गर्मी अगर है तो हमें गर्मी लगेगी और ठंडी है तो हमें ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा शरीर का जो तापमान है, स्थिर तापमान को बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत होती है। तो इसीलिए देखा होगा कि गर्मियों में हम हल्के और सफेद कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत आता है, और जब बहुत पसीना और गर्मी होती तो आपको क्या लगता है कि या तो आप पंखा चला के बैठ जाएं, या एसी में बैठ जाएं, या किसी पेड़ के नीचे बैठें, जहाँ की आपको ठंडक महसूस हो, आपको आराम मिले। और यही वजह है कि जो आपका बॉडी है वो अधिक तापमान पर ठंडा होने की चेष्टा करता है। और उस जैसे गर्मियों में हमें बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन जब सर्दियां हैं तो परिस्थितियां जो विपरीत हो जाएंगी। वो कैसे कि हम गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं, लेकिन सर्दियों में हम क्या करते हैं, हम मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म रखने वाले कपड़े, अपने शरीर को गर्म रखने वाले कपड़े पहनते हैं, और फिर भी हमें सर्दी लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम खुली धूप में बैठना पसंद करते हैं, हम हीटर चला के रखते हैं, हम अलाव जलाते हैं ताकि हम हमारे शरीर को बचाएं। और रात को जब सोते हैं तो क्या मोटी मोटी रजाइयां और कंबल लेते हैं, ताकि हमें हमारे शरीर को एक स्थिर तापमान जिसकी जरूरत है वो हमें मिले। और जब हमें एक स्थिर तापमान मिलता है तभी हम गर्माहट को महसूस करते हैं और हमारे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में हम मदद मिलती है। गर्मियों में हम हल्के और ठंडी चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं, और ठंडी में हम मोटे मोटे कपड़े, वूलन और मोटी रजाई कंबल लेते हैं और धूप में बैठते हैं। गर्मियों में तो कोई धूप में नहीं बैठेगा ना, गर्मियों में तो अगर निकल भी गए तो आएगा कि लगेगा कि हमें जल्दी से एसी या किसी ठंडे स्थान में बैठना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही परिस्थिति में, चाहे वो ठंडी का मौसम है या वो गर्मी का मौसम है, तो दोनों ही परिस्थितियां हैं उसमें हमारे शरीर को अपने आंतरिक तापमान को नियमित बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ती है। और ये जो कोशिश है ताप नियमन कहलाती है, यानी कि वातावरण के हिसाब से हमारा तापमान भी स्थिर रहे। तो हम आगे के सेक्शन में जब बात करेंगे तो हम इसी पर बात करेंगे, ताप रेगुलेशन पर, यानी थर्मो रेगुलेशन के ऊपर, कि ये क्यों जरूरी है। क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। हम एक लिमिट तक ताप सह सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उतने ताप के सहने के लिए योग्य है। तो हम ये जो ताप सहने की क्षमता है वो क्या है कि अगर हम देखें कि सामान्य रूप से जो जीवधारी है, कोई भी जीवधारी है, वो 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक भी, उसका जो रेंज है उसी के रेंज में भी जीवित रह सकता है। और कई बार क्या होता है कि अगर कई बार उच्चतर हो सकता है या निम्नतर तापमान हो, अलग अलग, क्योंकि जो जीवधारी है वो ठंडे बर्फ में भी पाए जाते हैं, समुद्र में, जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, नभ में भी मिलते हैं। तो अलग अलग जगह पर तापमान भी अलग अलग होता है, लेकिन क्या होता है कि हम उसको एक एडजस्टमेंट, यानी जिसे हम ताप नियमन कहते हैं, उसके द्वारा समायोजित कर सकते हैं। वो कुछ परिस्थितियां हैं कैसे कि या तो तापमान 45 डिग्री से ऊपर होगा या फिर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा। दो ही परिस्थितियां, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर का रेंज है वो है 0 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर सपोज तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, तब भी जीवों को परेशानी होने वाली है, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तब भी जीवधारियों को परेशानी होती है। अगर वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है, यानी अप हो जा रहा है, अगर सपोज 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तब क्या होगा, ये जो बॉडी में एंजाइमेटिक प्रक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म है, वो नष्ट हो जाएंगे, यानी एंजाइम नष्ट हो जाएंगे, तो हमारी सारी प्रक्रियाएं गड़बड़ा जाएंगी। जो प्रोटीन की क्वालिटी है, गुण है, वो भी नष्ट हो जाएंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, वो भी बिखर सकती है, टूट फूट सकती है, छिन्न भिन्न हो सकती है, और हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सपोज अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे हो जाता है तापमान, तब क्या होगा कि जो अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गया तापमान तो उसमें क्या होगा कि कोशिकाओं के भीतर ही और कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है उसमें आइस जम जाएगी। आइस कैसे जमेगी कि जो बर्फ के क्रिस्टल जैसे एक नीडल स्ट्रक्चर जैसा हो जाएगा, क्रिस्टल जैसे कारण वो जम जाएंगे, तो क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो बस्ट हो सकती हैं, फट सकती हैं और जीव उस परिस्थिति में जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये जितने जो तापमान का जो परिवर्तन है उसके कारण ये जो कारण होता है या तो ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा में भी क्या हो सकता है और कम में क्या हो सकता है ये हमने बात कर ली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो तापमान को सामान्य बनाए रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम सामान्यतः तापमान की एक खास सीमा के भीतर ही काम करते हैं, एक रेंज में है उसी के अनुसार वो काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न तापमानों पर एंजाइमों की क्या कैपेसिटी होती है, क्या कार्य क्षमता होती है। जैसे हमने बात की कि हमारे शरीर में बहुत सारे तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं और सभी एंजाइम्स जो सभी कार्य हैं वो एंजाइम्स के ही प्रेजेंस में वो ही मीडिएटर का काम करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, उसी के द्वारा संपन्न होते हैं। तो इस इन एंजाइम्स की भी कोई विशेषताएं हैं और ये क्या हैं और इस इनका जो विशेष जो है जो भी विशेषताएं हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ में। वो कैसे कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, अगर 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के तापमान में हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बढ़ोतरी अगर होती है तो उसमें एंजाइम उत्प्रेरित जो रिएक्शंस हैं अभिक्रियाएं हैं उनकी दर जो है बढ़ जाती है, दुगनी हो सकती है। और अगर तापमान बढ़ता है तो तापमान में वृद्धि होगी तो एंजाइम की क्रिया तेज होने लगती है, पर अगर तापमान अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाएगा तो भी क्या होगा कि एंजाइम बहुत तेजी से काम करते हैं और जो वांछित आवश्यक रसायनों के स्थान पर जो डिजायर नहीं है वो अवांछित जो मध्यवर्ती रसायन है वो उत्पन्न करने लगेंगे। यानी प्रक्रिया तो होगी लेकिन कुछ हानिकारक एंजाइम्स का भी निर्माण हो सकता है, रसायन का निर्माण हो सकता है। और तापमान में और अधिक वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा कि एंजाइम हमारे नष्ट होने की भी संभावना है। तो ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो एक सीमित रेंज में ही जो कि खास तौर से 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है सबसे अच्छा काम करते हैं, यानी कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम बहुत अच्छे काम करते हैं। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स हो गया कि सबसे अधिक उपयुक्त तापमान। अब कम तापमान अगर होगा तो क्या होगा, तो जो कम तापमान होने पर भी जो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे अगर कम है तब क्या होगा कि जो एंजाइमों की एक्टिविटी है रिएक्टिविटी है वो हमारी कम हो जाती है। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है या फ्रीजिंग पॉइंट पर है तो भी जो एंजाइम है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ताप नियमन की बात की, ताप सहनशीलता की बात हो गई, तो उसके आधार पर यानी शरीर की जो गर्मी है उसका नियमन करने की जो क्षमता है और जो तरीके हैं उनके आधार पर जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी हैं उनको भी दो प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक होती है हमारी एंडोथर्मी थर्म्स यानी आंतरोष्मी और दूसरे होते हैं एक्टोथर्म यानी बाह्योष्मी। तो इसकी क्या है, एंडो मीन्स क्या होगा अंता और थर्म मीन्स ऊष्मा। तो इसमें जो एग्जाम्पल इसका अगर हम बात करें तो वो होते हैं हमारे सारे स्तनधारी जितने भी हैं मैमल्स हैं और हमारे एव्स यानी पक्षी जो हैं ये इसमें शामिल होते हैं। और एंडोथर्मी थर्म्स जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म से वो कौन से हैं कि ये वो जीव होते हैं जो आसपास के तापमान के निरपेक्ष अपने शरीर का जो तापमान है वो स्थिर बनाए रखने की स्थिति में होते हैं। और इनके लिए हम दो वर्ड सिनोनिम्स भी यूज करते हैं, वो ये है पहला हम बोलते हैं होमियोथर्म होमियो मीन्स सेम और थर्म मीन्स हमारा ताप हो गया, यानी कि या फिर हम बोलते हैं होमोथर्म, जो अपने शरीर का तापमान स्थिर अथवा नियत बनाए रखते हैं। दूसरा है जो पहले बोला जाता था वार्म ब्लडेड, अब आजकल हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसको बात करते हैं होमियोथर्म। इसका जो ये थे जो प्राणी जो वार्म ब्लडेड प्राणी होते हैं, जिनके शरीर अगर हम टच करें तो उनका शरीर अगर आप टच करेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, तब भी अगर आप किसी अगर पिजन को या खरगोश को अगर आप पकड़ेंगे हाथ में तो वो आपको गर्म ही लगेंगे। दूसरा जो कैटेगरी थी वो थी हमारी एक्टोथर्म, एक्टो मीन्स वाह और थर्म मीन्स ताप या ऊष्मा की बात होगी, यानी कि उन प्राणियों का जिनके को जिनका शरीर का ताप जो है आसपास के वातावरण के तापमान के बढ़ते घटने रहने के साथ साथ बढ़ता रहता है, तापमान अगर बढ़ा तो बढ़ जाएगा, तापमान घटा तो घट जाएगा, तो इन्हें हम कहते हैं वाह्योष्मी, यानी कि एक्टोथर्म एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो शामिल होते हैं वो पक्षी और स्तनधारियों को छोड़ दें तो बाकी जितने जीव हैं, चाहे वो मछली है, चाहे वो मेंढक है, या वो रेप्टाइल्स हैं, या फिर वो इंसेक्ट हैं, या फिर वो अर्थवॉर्म है, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे एंडोथर्म को हम होमियोथर्म और वार्म ब्लडेड कहते हैं, उसी तरह से हम जो एक्टोथर्म है उनको भी हम पहला एक बोलते हैं विषमतापी, यानी कि पोइकिलोथर्म, मतलब पोइकिलो मीन्स परिवर्तनशील और थर्म मीन्स ऊष्मा। इसका मतलब क्या है कि अपने आसपास के वातावरण से शरीर का तापमान उपार्जित करना, और इसको दूसरे नाम से जो बोला जाता है, जैसे वार्म ब्लडेड बोला जाता था गर्म रुधिर वाले, उसी तरह से बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, यानी ठंडे रुधिर वाले। ये भी जैसे हमने बात किया कि पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था और अब नहीं करते, लेकिन फिर भी हम वर्ड तो यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप छू रहे हैं उस जीव के शरीर को तो आप उसका शरीर आपको ठंडा महसूस होगा। तो आपको एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर कभी आपने कॉकरोच पकड़ा हो या फिर आपने किसी फ्रॉक को अगर टच करें पकड़े हाथ से, तो चाहे आप किसी भी मौसम में छुए वो हमेशा ही आपको ठंडे लगेंगे। अब हम बात करते हैं एंडोथर्म जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके शरीर की उनके विशिष्ट लक्षण क्या हो सकते हैं, कि पहली बात तो ये कि अपनी आंतरिक ताप नियामक क्रियाविधि के कारण वो ये जो एंडोथर्म ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि पक्षी और स्तनधारी आते हैं, भारी तापमान के निरपेक्ष चाहे वह ठंडा हो या फिर बहुत गर्म हो, अपने शरीर का तापमान 2 डिग्री के एक लिमिटेड रेंज के भीतर बनाए रखते हैं, और इसीलिए अगर हम देखें तो जो मैमल्स हैं उनके मुकाबले जो पक्षी हैं वो आमतौर से ज्यादा गर्म होते हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं।